नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। अफगानिस्तान के जवाबी हमले में 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, 2 सैन्य ठिकानों और 19 चौकियों पर कब्जा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ खुले युद्ध की घोषणा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, आतंकवाद मानवाधिकारों के सबसे जघन्य उल्लंघनों में से एक है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी 4 दिन की भारत यात्रा पर आज मुंबई पहुंचेंगे। श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरणी अमरसूरिया ने भारत से मजबूत व्यापारिक संबंध, अधिक निवेश और पर्यटकों की बढ़ती संख्या का स्वागत किया। और चेन्नई में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 72 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। अफगानिस्तान ने कल रात पाकिस्तान पर जवाबी हमला किया। इस हमले में 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में हवाई हमले किए थे। एक रिपोर्ट।
अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि जवाबी हमले में पाकिस्तानी सेना की 19 चौकियों और 2 सैन्य ठिकानों पर कब्जा कर लिया गया है। अफगानिस्तान ने पक्तिका, खोस्त, नांगरहार, पाक्तिया, कोनार और नूरिस्तान के निकट पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाया। अफगानिस्तान ने दावा किया है कि 4 घंटे के इस अभियान में निर्धारित लक्ष्य हासिल किए गए और भारी मात्रा में विस्फोटक तथा हथियार जब्त किए गए। अफगानिस्तान ने बताया कि इस अभियान में उसके 8 सैनिक मारे गए और 11 घायल हुए। नांगरहार में एक शरणार्थी शिविर पर पाकिस्तान के हवाई हमले में 13 नागरिकों की मौत हो गई। इसके बाद पाकिस्तान ने काबुल, कंधार और पक्तिया में कुछ स्थानों पर हमले किए। अफगानिस्तान ने कहा कि इस हमले का भी करारा जवाब दिया जाएगा। विश्व दर्पण के लिए मैं जया भारती।
इस बीच पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ खुला युद्ध घोषित कर दिया है। इससे पहले तालिबान प्रशासन ने सीमा पार हमले में कई पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने और गिरफ्त में लेने का दावा किया था। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पाकिस्तान के धैर्य की सीमा खत्म हो चुकी है और अब अफगानिस्तान के खिलाफ खुले युद्ध की घोषणा है। पाकिस्तान ने काबुल, कंधार और पक्तिया सहित कई अफगानी शहरों को निशाना बनाया। अफगान तालिबान के प्रवक्ता जैबुल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तानी हमले की पुष्टि की है। पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी ने इस सैन्य कार्रवाई को अफगानिस्तान के खिलाफ करारा जवाब बताया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि आतंकवाद मानवाधिकारों के उल्लंघन का सर्वाधिक घृणित अपराध है और इसे किसी भी आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। एक रिपोर्ट।
जिनेवा में मानवाधिकार परिषद को वीडियो लिंक के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री जयशंकर ने कहा कि संघर्ष, ध्रुवीकरण और अनिश्चितता से भरे विश्व में भारत वैश्विक हित में इस समस्या का समाधान चाहता है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार परिषद से मानवाधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर काम होना चाहिए। भारत को अक्टूबर में महासभा में 188 में से 177 मतों से 7वीं बार मानवाधिकार परिषद के लिए गया। श्री जयशंकर ने कहा कि ये भारी जनादेश भारत में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भरोसा व्यक्त करता है। विश्व दर्पण के लिए मैं शक्ति सिंह।
बलूचिस्तान की प्रमुख मानवाधिकार संस्था बलूच यकजहती कमेटी ने कहा है कि बलूचिस्तान के मक्सीन नदी इलाके में पाकिस्तानी सेना ने गैर कानूनी रूप से 2 नागरिकों, नसराम बलूच और अवैस बलूच की हत्या कर दी है। मानवाधिकार संस्था ने बताया कि नसराम बलूच को 1.5 वर्ष पहले जबरन गायब किया गया था और उसे यातना देकर मारा गया। वहीं 23 फरवरी को छात्र अवैस बलूच को पंजगुर में उसके घर से जबरन उठाया गया और अगले दिन उसका शव सिविल अस्पताल में फेंक दिया गया। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी आज से 2 मार्च तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री कार्नी की ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्नी आज मुंबई पहुंचेंगे और अगले 2 दिन तक व्यावसायिक संगोष्ठियों में भाग लेंगे। एक रिपोर्ट।
मार्क कार्नी उद्योग जगत और वित्तीय विशेषज्ञों, दोनों देशों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, नवाचारियों और भारत स्थित कनाडाई पेंशन निधि अधिकारियों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्नी 1 मार्च को दिल्ली आएंगे। अगले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में उनकी शिष्टमंडल स्तर की वार्ता होगी। दोनों नेता भारत कनाडा कार्यनीतिक साझेदारी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे और प्रमुख क्षेत्रों में जारी सहयोग का जायजा लेंगे। क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श करेंगे। इसके बाद दोनों नेता भारत कनाडा मुख्य कार्यकारी अधिकारी फोरम की बैठक में भाग लेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने के प्रयास के महत्वपूर्ण अवसर पर हो रही है। दोनों नेताओं के बीच होने वाली बैठक से आपसी साझेदारी मजबूत करने में मदद मिलेगी। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
भारत और केन्या के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की चौथी बैठक में रक्षा अनुसंधान, विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। कल हुई बैठक में सैन्य सहयोग बढ़ाने, प्रशिक्षण के अवसर बढ़ाने और समुद्री सुरक्षा सहयोग मजबूत करने पर भी बातचीत हुई। दोनों पक्षों ने नौसेनाओं के बीच पारस्परिक संपर्क सहित सैन्य संबंधों को व्यापक बनाने पर सहमति व्यक्त की। बैठक में रक्षा सहयोग मजबूत करने और विस्तारित करने के लिए 5 वर्षीय कार्य योजना तैयार करने पर सहमति बनी। दोनों देशों ने अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहयोग, सैन्य अभ्यास, सीमा प्रबंधन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और साइबर सुरक्षा जैसे उन्नत क्षेत्रों में क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और ज्ञान आदान प्रदान सहित सैन्य चिकित्सा सेवा में सहयोग पर भी चर्चा की। श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिणी अमरसूरिया ने भारत से मजबूत व्यापारिक संबंध, उच्च निवेश और पर्यटकों की बढ़ती संख्या का स्वागत किया है। उन्होंने भारत के साथ सहयोग बढ़ाने की श्रीलंका की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस और श्रीलंका के 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित भोज में डॉ अमरसूरिया ने कहा कि श्रीलंका भारतीय व्यवसायों के साथ संबंध बढ़ाने और पर्यटन के माध्यम से लोगों के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा देने का उत्सुक है। श्रीलंका इंडिया सोसाइटी के कार्यक्रम में राजनयिकों, व्यवसायियों और भारतीय समुदाय के लोगों ने भाग लिया। डॉ अमरसूरिया ने भारत को श्रीलंका का सबसे करीबी सहयोगी बताया और चुनौतीपूर्ण समय में भारत के निरंतर सहयोग और समर्थन के प्रति आभार प्रकट किया। नेपाल के वन और पर्यावरण मंत्री माधव प्रसाद चौलागेन ने कहा है कि 5 मार्च को होने वाले आम चुनाव की तैयारियों में भारत एक सहयोगी साझेदार रहा है। श्री चौलागेन ने कहा कि पड़ोसी देश होने के नाते भारत बहुत करीबी सहयोगी रहा और यह सुनिश्चित करने में मदद की कि सारी तैयारियां समय से पूरी हों और चुनाव के लिए सभी संसाधन उपलब्ध हों। नेपाल में 5 मार्च को होने वाले आम चुनावों को देखते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित मतदान केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां वहां की निगरानी कर रही हैं। मतदान केंद्रों को 3 सुरक्षा स्तरों, सामान्य, संवेदनशील और अति संवेदनशील में वर्गीकृत किया गया है। अमरीका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने अमरीकी सांसदों को बताया कि उन्हें जेफरी एपस्टीन के अपराधों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और न ही उससे मुलाकात की कोई याद है। श्रीमती क्लिंटन ने एक बयान में कहा कि उन्हें उनकी आपराधिक गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कोलंबो में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले में आज न्यूजीलैंड का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। कल भारत ने जिम्बाब्वे को 72 रन से हरा दिया। भारत के 257 रन के लक्ष्य के जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 6 विकेट पर 184 रन ही बना सकी। हार्दिक पंड्या को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। कल अहमदाबाद में खेले गए एक मैच में दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 9 विकेट से मात दी। जर्मन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के किदांबी श्रीकांत का कल पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में ताइवान के लिन चुन यी से सीधे गेम में हार का सामना करना पड़ा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अफगानिस्तान के जवाबी हमले में 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, 2 सैन्य ठिकानों और 19 चौकियों पर कब्जा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ खुले युद्ध की घोषणा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, आतंकवाद मानवाधिकारों के सबसे जघन्य उल्लंघनों में से एक है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी 4 दिन की भारत यात्रा पर आज मुंबई पहुंचेंगे। श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिणी अमरसूरिया ने भारत से मजबूत व्यापारिक संबंध, अधिक निवेश और पर्यटकों की बढ़ती संख्या का स्वागत किया। और चेन्नई में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 72 रन से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।